भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ नवम स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक संख्या 26 से 36 तक एक डजन। तो बोर्ड में 36 लिखा है, उसको आवृत्ति करेंगे, बाकी भी पढ़ लेंगे। उर्वश्युवाच मामृथः पुरुषोऽसि त्वम् मास्मत्वाद्युर्बुकायिमे क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां व्रीकाणां हृदयं यथा। उर्वश्युवाच मामृथः पुरुषोऽसि त्वम् मास्मत्वाद्युर्बुकायिमे क्वापि सख्यं न ते वै क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां ब्रिकाणां हृदयं यथा। तो श्लोक 26 से पाठ कर लेते हैं, फिर उसका शब्दार्थ थोड़े पढ़ेंगे। श्लोक 26। तया स पुरुषो श्रेष्ठो रमयन्त्या यथार्हतः रे मे सुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिषु। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, पुरुष श्रेष्ठ पुरुर्वा उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगा। वे दोनों चैत्ररथ नंदन कानन जैसे अनेक देवी स्थलों से रति क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जहां पर देवतागण भोग विहार करते हैं। रममाणस्तया दिव्या पद्म किंजलक गंधया। साउंड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है क्या? रममाणस्तया दिव्या पद्म किंजलक गंधया तन्मुखा मोदमूषितो मुमुदे अहरगणान बहुन। उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था, उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से अनुप्राणित होकर पुरुर्वा ने अत्यंत उल्लासपूर्वक उनके अनेक दिनों तक उनके साथ रमण किया। श्लोक 26। अपश्यन उर्वशीर इंद्रो गंधर्वान समचोदयत उर्वशी रहितं मह्यं स्थानम नासितो सुभित। उर्वशी को आपने सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्व से अनुरोध किया कि वे उसे पुनः स्वर्गलोक में वापस ले आएं। श्लोक 27। ते उपत्य महारात्रे तमसी प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उरुणे जुहन न्यस्तो राजा निजायया। इस तरह गंधर्वगण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में पुरुर्वा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा प्रदत्त दोनों मेमने को चुरा लिए। श्लोक 28। निशम्याक्रदितं देवी पुत्रयोर्णेयमानयो हताभ्ययं कुनाथेन नपुंसा विरमानिना। उर्वशी इन दोनों मेमने को पुत्र स्वरूप मानती थी, अतएव जब उन्हें गंधर्वगण ले जा रहे थे और जब उन्होंने ममियाना शुरू किया तो उर्वशी ने इसे सुना। उसने अपने पति को फटकारते हुए कहा, हाय हाय, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहती हुई मारी जा रही हूँ जो कायर एवं नपुंसक है किंतु आपने को परम वीर समझता है। श्लोक 29। जद्विश्रम्भादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः यसेते निशिसंत्रस्तो यथा नारी दिवापुमान। चूंकि मैं उस अपने पति पर आश्रित थी, अतः लुटेरे ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमने को छीन लिया है और अब मैं विनष्ट हो गई हूँ। मेरा पति रात्रि में डर के मारे उसी तरह सो रहा है जैसे कोई स्त्री हो, यद्यपि दिन में वह पुरुष के भांति प्रतीत होता है। श्लोक 30। इति वाक्सायकैर्विद्धै प्रतोत्रैरिव कुञ्जरः निशि निस्त्री समादाय विवस्त्रो भद्रभत्रिषा। पुरुर्वा उर्वशी के कर्कश शब्द से आहत होने के कारण उसी तरह से अत्यधिक क्रुद्ध हुआ जिस तरह हाथी महावत के अंकुश से होता है। वह बिना उचित वस्त्र पहने हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्व का पीछा करने के लिए नंगे बाहर चला पड़ा। श्लोक 31। ते विसृज्यो रणो तत्र व्यादो दन्तं स्म विद्युतः आदाय मे समायांतं नग्नमेख्यत सापतिम। उन दोनों मेमने को छोड़कर गंधर्वगण बिजली के समान प्रकाशमान हो उठे जिससे पुरुर्वा का घर प्रकाशित हो उठा। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमने को हाथ में लिए लौट आए हैं किंतु वे नग्न हैं, अतः उसने उनका परित्याग कर दिया। श्लोक 32। एलोपी शयने जायम अपश्यन विमनाइव तच्चित्तो विहळ शोचन बभ्रामन मतबन महिम। उर्वशी को आपने बिस्तर पर न देखकर पुरुर्वा अत्यधिक दुखी हुए है। उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वह मन में खिद्ध था। तत्पश्चात विलाप करते हुए वह पागल की तरह सारी पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। सतांग विख्य कुरु क्षेत्रे सरस्वत्यांग च तत्सखी वंश प्रहृष्ट वदन प्राह सुक्तं पुरुर्वाहा। एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए पुरुर्वा ने उर्वशी को उसकी पांच सखियों सहित सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। प्रसन्न मुख होकर वह उससे मधुर शब्दों में से इस प्रकार बोला, अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि मां त्वम अद्याप्य निवृत्य बचांसी कुणबावहे। हे प्रिय पत्नी, हे क्रूर, जरा ठहर तो। मैं जानता हूँ कि अभी तक मैं तुम्हें कभी भी सुखी नहीं बना पाया, किंतु तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि तुम मेरा साथ छोड़ने का निश्चय कर ही चुकी हो, किंतु तो भी आओ कुछ क्षण बैठकर बात तो कर लें। श्लोक 35। सुदेहयं पतयं यत्र देवी दुरंघृतस्त्वया खादन्तेन मृका गृध्रा स्त्वत्प्रसादस्य नास्पदम्। हे देवी, क्योंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, अतः मेरा यह सुंदर शरीर यहीं धराशायी हो जाएगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे सुख अनुकूल नहीं हूँ, इसलिए इसे लोमड़िया तथा गिद्ध खा जाएंगे। श्लोक 36। उर्वशी उवाच, मामृथा पुरुषोऽसि त्वं मास्मत्वारृका इमे क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां मृकाणां हृदयं यथा। शब्दानुवाद, उर्वशी उवाच, उर्वशी ने कहा, मामृथा, अरे शरीर त्याग मत करो, पुरुषोऽसि, आप पुरुष हो, त्वं, त्वम, तुम, मास्मा, ऐसा ना होने दो, त्वा, तुमको, अद्यह, खा सके, अद्युहु, खा सके, ब्रिका, लोमड़िये, इमे, इन इंद्रियों को, क्व अपि, कहीं भी, सख्यम, मैत्री, न वई, कभी नहीं, स्त्रीणाम, स्त्रियों के, ब्रकाणाम, लोमड़ियों की जैसे, हृदयम, हृदय को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो और अपने प्राणों को मत त्यागो, गंभीर बनो और लोमड़िया की भांति अपने इंद्रियों के बस में मत रहो। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपने इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्री से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं। तात्पर्य, चाणक्य पंडित का उपदेश है, विश्वासो नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च। किसी स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी भी विश्वास मत करो। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए बिना प्रत्येक व्यक्ति बद्ध और पतित है। फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो मनुष्य की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है। स्त्रियों की तुलना शूद्र तथा वैश्यों से की जाती है, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा। किंतु जब कोई आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त कर लेता है, तो चाहे वह मनुष्य हो या स्त्री, शूद्र हो या अन्य कुछ, सभी बराबर होते हैं। अन्यथा उर्वशी जो स्वयं स्त्री थी और स्त्री स्वभाव को जानती थी, वह न कहती कि स्त्री का हृदय धूर्त लोमड़ी की तरह होता है। यदि मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, तो वह ऐसे धूर्त लोमड़ियों का शिकार बन जाता है। किंतु यदि वह इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो वह धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों का शिकार नहीं बन सकता। चाणक्य पंडित ने यह भी उपदेश दिया कि यदि किसी की पत्नी धूर्त लोमड़ी जैसी हो, तो उसे तुरंत ही गृहस्थ जीवन का परित्याग करके जंगल में चला जाना चाहिए। माता जस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। कृष्ण भावना भावित गृहस्थ को धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि घर में स्वाभाविक पत्नी हो और वह कृष्ण भावनामृत में पति का सहयोग करती हो तो वह घर धन्य है, अन्यथा मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़कर जंगल में चला जाए। हित्वात्म पातंग गृहमंध कूपंग वनंगतो जत हरिमाशये तत्। मनुष्य को जंगल जाकर भगवान हरि के चरण कमल की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बलिय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये जो प्रसंग आप नौवां स्कंद में अभी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पुरुरुवा उर्वशी प्रसंग वर्णित हुआ है, आप लोग तो सीरियली पढ़कर आए हैं, उनको पता होगा। जो आज नए आए हैं तो उनके लिए थोड़ा पूर्व प्रसंग को बोलना सही है। तो पुरुरुवा महाराज सत्ययुग के चक्रवर्ती नरेश थे। इतने सामर्थ्यवान, प्रभावशाली और रूप गुण में श्रेष्ठ पुरुष थे, जिनका वर्णन इंद्र ने अपने असेंबली हाउस में स्वर्गलोक में किया। बोला कोई पुरुष हो, रूपवान गुणवान वीर हो तो महाराजा पुरुरुवा जी से उनका बात लिया और खूब बड़ाई कर रहा। उनके रूप गुण का वर्णना इंद्र की अमरावती अमर सभा में हो रहा था, उसको सुन करके स्वर्ग की देवांगना उर्वशी वो फंस गई। उन्होंने डिसाइड की, अरे जो भी हो, उनको मित्र वरुण का साप भी था, तो उन्होंने स्वर्ग त्याग करके पुरुरुवा को प्राप्त करने के लिए वो डाउनवर्ड फ्लाइट ली, नीचे आई। अब आकर के पुरुरुवा से, पुरुरुवा के राज्य में आकर के मिली उनको, पुरुरुवा के सीधा उनको क्यों, तो कहीं भी घुस जाएंगे, उनको कोई चंकिन फकिन है नहीं, वो सूक्ष्म शरीर वाले। सीधा आकर उनके घर में प्रवेश किया। पुरुरुवा ने जब देखा उर्वशी को, देखते ही वो भी क्योंकि स्वर्ग के, उर्वशी कोई स्वर्ग के प्रोडक्ट नहीं है, वो तो सीधा भगवान के प्रोडक्ट है। हाँ, भगवान नरनारायण में अपने अंगों से उनको बनाए थे, वो ऐसे मटेरियल प्रोडक्शन नहीं है ना, वो स्पिरिचुअल बॉडी कंप्लीटली। अब उनको तो फिर गिफ्ट में दिए थे इंद्र को, इंद्र अपने स्वर्ग में रखा था उनको, स्वर्ग के ब्यूटी करके, क्वीन ऑफ हेवन, तो उसको मान के रखा था। लेकिन कुछ गड़बड़ी हुआ था, मित्र वरुण ने साप दिए थे और उन्होंने भी पुरुरुवा के रूप गुण सुन करके थोड़ा आसक्त हुआ था, तो उन्होंने आ गया पुरुरुवा से शादी करने के लिए। वो आकर चुपचाप अपने को संभाल कर खड़ी हो गई उनके सामने। पुरुरुवा महाराज टोटली सरेंडर हो गए, बलबास और क्या है आप, वो सब छोड़ करके उनको सरेंडर किए। जो भी हो, वो दोनों का बातचीत हुआ, दोनों ने एग्रीमेंट साइन किए कि शादी करेंगे। लेकिन क्योंकि स्वर्ग की देवी थी उर्वशी ने, तो उन्होंने कुछ कंडीशन रखी। बोले मैं देखो, मैं स्वर्ग छोड़कर आई हूँ यहाँ पर, हमारा सिस्टम कल्चर अलग है, आपका यहाँ अलग है, तो इसलिए कम से कम दो तीन सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। एग्रीमेंट राजी होंगे ना, बताओ क्या क्या है। वो तो पहले से राजी हूँ, फिर बता दो। बताओ, बोले देखो मेरे साथ दो मैम नहीं समझते ना, हिंदी मैम नहीं बोलते ना, भेड़िया के बच्चे, हाँ छोटे भेड़ के बच्चे, हाँ अच्छा भेड़िया दूसरा होते हैं, अच्छा भेड़ के बच्चे, जो भी हो छोटे छोटे, वो कुछ दो लेकर आया था, बोला ये मेरे साथ हैं, मेरे साथ वहीं इम्पोर्टेड हैं, यहाँ के प्रोडक्ट नहीं है, तो उनको मेरे साथ रहना, उनकी सुरक्षा ना, कोई बात नहीं, अरे सुरक्षा उनको, पूरा राज्य को सुरक्षित कर रहा हूँ उन दोनों को, क्या है, नो प्रॉब्लम ना, नहीं हमेशा रहेंगे राजभवन में, कहीं इधर उधर कोई चोरी चारी ना हो जाए, अरे चोरी का बात क्या है, तिजोरी में रख देंगे उसको, ना नहीं खिलाना पिलाना कोई बात नहीं, रहेंगे और 10 पीस गार्ड रख दिया होगा उनके पीछे। और दूसरा कंडीशन क्या है ना, देखो यहाँ का आपका जो खान पान बड़ा गड़बड़ है, हमको तबीयत खराब होगा, तो इसलिए हम तो केवल घी खाऊंगी और फिर देसी, आजकल घी बोलने से तो बाजार से खरीद लाएंगे फिर डुप्लीकेट है, वो बोला नहीं देसी, तब जमाने सत्य युग में देसी तो मिलता होगा, देसी घी केवल खाऊंगी या घी के बना हुआ प्रोडक्ट वही खाऊंगी। तो राजा के पास घी का कौन सा कमी था, और राजी हो गया, बोला ओके। और तीसरा कि किसी भी समय केवल मैथुन के समय को छोड़ करके बाकी किसी भी समय में आपको वस्त्रहीन अवस्था में नहीं देखना चाहती हूँ, ओके नो प्रॉब्लम। तो तीन कंडीशन से एग्रीमेंट करके तो उन्हीं को अपने पत्नी के रूप में अपॉइंटमेंट कर दी। तो करने के बाद आज 24 नंबर श्लोक से हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उन दोनों दंपतियों ने आप जितने स्वर्ग के बड़े बड़े बगीचाएं थे, नंदन कानन चित्ररथ आदि, हम तो केवल नाम ही सुनते हैं, वही थर्ड क्लास से बगीचा जाके देखते हैं वॉकिंग करने के लिए, है ना, नहीं, लेकिन वो जो सब स्वर्गीय कानन है, मतलब उनके पास कोई व्यवस्था था, वहाँ जाते थे वो लोग, तभी जमाने में तो ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी था स्वर्ग दूसरे दूसरे लोगों जाने के लिए, लेकिन उनका तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होगा ही, अपना हेलीकॉप्टर वगैरह होगा, चले जाते थे स्वर्गीय नंदन कानन चित्ररथ ऐसे सब यहाँ जा करके रमण करते थे, घूमते थे, हनीमून करते थे, अनेक दिन कई वर्षों मन नहीं भरता था उनका, राजा है क्या, वहाँ किसी को सेवा में लगा करे, आपने घूमते रहा, घूमते रहे, कई वर्षों बीत गया, आकर फिर महल में भी आते थे, रहते थे, तो लेकिन उनका तृप्ति फिर भी नहीं होता था। लेकिन एक दिन इंद्र को लगा कि उर्वशी जी एब्सेंट, तो उनको अच्छा नहीं लगा, यद्यपि और भी देवांगनाएं थे लेकिन इंद्र को अच्छा नहीं लगा, वो गंधर्व को बुलाकर बोला व्हाट हैपेंड, ये क्यों नहीं है इधर, उनके बिना स्वर्ग के शोभा श्रीहीन हो गया है, आप जाओ कैसे भी उनको लेकर, उनको बता हिस्से ऐसे ऐसे ऐसे, बोले नहीं 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 कोई से प्लान करो, उनको बैक ब्रिंग हर बैक। तो उनने बोले ठीक है, तो उनने प्लान किए, वो गंधर्वों ने फिर आए, आ करके मध्य रात्रि आधी रात को आ करके अब उनका घर में घुसे, पूर्ववा के राजमहल, उनको तो कोई सूक्ष्म शरीर वाले, उनको कोई दरवाजा गेट चौकीदार कुछ रुक नहीं सकता, वो सीधा घुस गए, घुस कर आ करके जहाँ मेमने दोनों थे, वो भी स्वर्गीय प्रोडक्ट थे ना, वो आपने समझ गए, वो उनको उठा करके जा रहे थे, तो मेमने को पिंच कर दिया होंगे, वो चिल्लाए, वो आवाज़ किए म्याम म्याम जैसे लिखा है, ऐसे कुछ जो भी कोई आवाज़ किए, जो भी जैसे आवाज़ भेड़ के बच्चे के होते हैं ऐसे आवाज़ किए, वो आवाज़ को सुन करके उनका नींद खुल गई, मिड नाइट में उर्वशी का नींद खुली। अब उनको तो लगा कि मेरे मैम ने चोरी हो जा रहे हैं, तो सोते अवस्था में इतने डांट लगाई, इतने फटकारी अपने पति को पुरुर्वा महाराज को, बड़ी कटु भाषा में कर्कश भाषा में बोली, तो सोए थे लेकिन अभी इतने कटु वाणी सुन करके तुरंत खड़े हो गए, तलवार खींच लिए और चल पड़े, और उनको भूल गए कि कपड़ा भी पहन लू सही नहीं, आधी रात को चल पड़े, अंधकार ही था, और जा करके, और उन्होंने कोई ज़्यादा दूर नहीं गए थे, उनको पता था तो उनको क्या करना है, वही घर के अंदर कोई ज़्यादा दूर नहीं गए थे, वो धमका जैसे पीछे गया तो उन्होंने क्या कि बच्चे को छोड़ दिए, मेमने को छोड़ करके स्वयं अपने से सेल्फ लाइटेड होते हैं, वो लाइट ऑन कर दिया अपना, वो पूरा घर सारा लाइट हो गया, लाइट हो गया तो मेमने को उठा लिए थे, लेकिन उर्वशी ने खाड़ी थी वो देखा कि वो तो नेकेड, बोला तीसरा कंडीशन हो गया, अब मैं बाय बाय, खत्म, चली गई। तो पुरुर्वा महाराज पागल हो गए, पागल हो करके राज्य घर परिवार सब छोड़ करके उनके लिए पागल होकर घूमने लगे, कई वर्षों विश्व भ्रमण कर रहे थे, पूरा विश्व को उसको ढूंढने करके हा और बसी हा और बसी कहकर घूम करके पागल की तरह एक बार कुरुक्षेत्र में आकर पहुंचे थे। कुरुक्षेत्र में कई सालों के बाद एक बार भेंट हुआ। उर्वशी अपनी 5 सखियों के साथ आई थी, पता नहीं कुरुक्षेत्र स्नान टान करने आई होंगी जो किसी आए हो, शायद सूर्य ग्रहण अग्रह होगा इसमें आते हैं, जो भी हुआ वो भी शायद इसलिए गए होंगे, वो वहीं भेंट हो गया और पहचान लिए पुरुरवा महाराज। तो पहचान ले तो उनको बुलाए, बोले देखो आप थोड़ा रुक जाओ, मुझे छोड़कर क्यों चले गए, जो आपने जो बहुत दुख की बात कहे। अब बोले कि ये बात से सुनेगा कि नहीं पता नहीं, तो फाइनल वार्निंग दिए, बोले देखो आप फिर मेरे से बात नहीं करेंगे, मेरे साथ बैठोगे नहीं, चले जाऊंगी तो मैं यहीं सुसाइड कर डालूंगा, मर जाऊंगा वहीं पे, और आपके सामने मेरे ये राज शरीर को देखना, ब्रूक आदि ब्रूक इशू कहते हैं सा, जो कुत्ते जैसा होते हैं, लोमड़ी पता नहीं किसको कहते हैं, लोमड़ी किसको कहते हैं, बार बार ये शब्द आया। हाँ, जो मुर्दा को खाने वाले होंगे वही होंगे और क्या, हाँ गीद लोमड़ी इसको बोलते हैं। बोले मैं तो मर जाऊंगा और वो लोग खाएंगे, तुझे अच्छा लगेगा, तू इतने दिन तक इतने साल तक मेरा पत्नी रहा और तेरे पति को ऐसे खा जाएंगे मुर्दा को, तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए प्लीज बी मर्सीफुल लिटिल बिट, इतने प्रार्थना की। तो ऐसे प्रार्थना सुन करके उर्वशी ने बोला, उर्वशी स्त्री उनकी पत्नी वो बोल रही है ये श्लोक उर्वशी वाचा, और आगे 4-5 श्लोक उर्वशी ने बताएंगी, स्त्रियों के पोल खोल देगी। अब उसमें कोई दोष नहीं देंगे क्योंकि उन्हीं की तरफ के है। तो उन्होंने बोली, बोले अरे तुम पुरुष हो, वीर हो, राजा हो, ऐसे क्यों हो रहा है, इसे मरने के लिए क्यों, सुसाइड करने के लिए क्यों तैयार हो रहा है, मरो मत। उन्होंने समझाए, तुझे इतने सुंदर राज शरीर है उसको ब्रुक ना खा जाए, ऐसा मत करो, रुको रुको प्लीज डोंट डू लाइक दैट। तो फिर क्या करें ना, देखो तुम क्यों इतना फंस जा रहे, अपने को संयमित नहीं कर रहा है, आपको पता नहीं स्त्रियों के बारे में उर्वशी ने कह रहे हैं कि स्त्रियों के साथ मित्रता करना वो इतने खतरनाक होते हैं, उनके हृदय कैसा होता है, लोमड़ी जैसा होता है, हाँ खा जाएंगे, तो इसलिए खतरनाक। तो स्त्री के साथ बहुत होशियार से मित्रता करना, यही श्लोक में तो लिखा है, क्वापि सख्यंग नैव स्त्रीणां ब्रुकाणंग हृदयंग जथा, जिनके हृदय जथा हृदयंग ब्रुक, ब्रुक जथा हृदय, जैसे ब्रुक जैसा हृदय, उनके साथ सख्य नहीं करो, उनके साथ फ्रेंडशिप मत करो, नहीं जानता तो नहीं, मां मृथार से अब मरो मत प्लीज, मर जा मत, इसे फंस करके ऐसे मत करो, इसे समझाती है वो आगे, और अच्छा भी समझाएगी। लेकिन तब इस बात पर हम देखते हैं, यद्यपि पुरुरवा महाराज उर्वशी के सौंदर्य और उनके रूप के प्रति इतने आकर्षित हो गए थे, ऐसा नहीं कि पुरुरवा महाराज को दूसरे रानी नहीं होंगे, होंगे और उनको भी समर्थ थे, और 10-20 और भी शादी कर ले कोई फर्क थोड़ी पड़ता, उनको मेंटेनेंस की चिंता तो था नहीं उनका, लेकिन फिर भी उर्वशी के रूप गुण से इतने मोहित थे, वो पागल की तरह भोगते थे और मरने तक तैयार हो गए थे। तो उर्वशी ने उनको समझाई कि इसे नहीं होना करना चाहिए, और बोल करके उनको उपदेश दे रही है, देखो इतना ज़्यादा मत फंसो, मैं स्वयं कह रही हूँ स्त्रियों के स्वभाव ऐसी होती है, अभी तक एक ही स्वभाव केवल बताई, आगे और भी गुण बताएंगे, आगे आगे श्लोक में पढ़ेंगे, हमारे भाग्य में तो केवल एक ही पढ़ा। लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य कहते हैं चाणक्य पंडित को बात ली है, बोले देखो चाणक्य पंडित भी नीति उपदेश में तो और कठोर बात कहे हैं, लेकिन उसको नहीं लिखे हैं। ये लिखे हैं तो बोले कि विश्वास नैव कर्तव्य स्त्री सुराज कुड़े सुचा, बोले बाकियों की बात छोड़ो, स्त्री और गवर्नमेंट वर्कर्स को कभी विश्वास मत करना, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते राज कर्मचारी उनको भरोसा मत करना, विश्वास हम नहीं कर्तव्य, वो कभी धोखा दे देंगे आपको। और आगे चलकर कहते हैं चाणक्य जी और एक उपदेश देते हैं, क्या बोलते हैं कि वो तो कभी कभी जरूरत पड़े तो उनको अगर प्लान सही फिट नहीं बैठता है तो पति को पुत्र को किसी की मर्डर कर सकते हैं, वो पीछे नहीं हटने वाले, और और एक बताते हैं कि माता जस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम जथा गृहम तथा अरण्यम। बोलते हैं कि दो इंस्टांस देते हैं, जिनके घर में माँ नहीं है, साधिसदा है माँ चल बैठ, माँ नहीं है, माँ क्यों, माँ ही केवल बच्छला होता है, बाछल भाव रहता है, पुत्र भले कैसे उसको माने नहीं माने, डांटे उनको पाले पोसे कुछ भी करे, वो तो थोड़ा बहुत गुस्सा होगी लेकिन फिर भी ले दे करके उनका बच्छलता रहेगा, उनका प्रेम स्वभाव सहज भाव से रहेगा पुत्र के प्रति। बोले जिस पुत्र के माँ नहीं है और दूसरी माँ बीवी के रूप में है, माता जस्य गृह नास्ति भार्या, भार्या तो है कैसे है ना च अप्रियवादिनी, आप कुछ भी कहो सीधा डांट मारती है, उनको पसंद नहीं, आपके कोई भी बात उनको पसंद नहीं है, और ऐसे बोलती है कटु वाक्य अप्रियवादिनी, प्रिय बात एक दिन भी नहीं कहा, उनसे मुंह से जो वाणी निकला ऐसे मुंह करके सुनना होगा, अच्छी बात कभी कही नहीं। तो बोले ऐसी प्रकार के गृहस्थी से घर से तुरंत भाग करके जंगल में चला जाना चाहिए, किसी को बिना बताए हाँ फोन घर में छोड़ के जाना चाहिए, नहीं तो भाग जाना चाहिए। बोले क्यों क्यों, बोले जंगल तो फिर भी अच्छा है, घर तो उससे भी बढ़कर है। बोले मतलब इससे ये पता चलता है अगर स्त्री अप्रियवादिनी हो, माँ हो, माँ को देख करके फिर भी घर टिक सकते, अगर माँ नहीं है केवल दूसरी है तब तो फिर रहने के लायक नहीं, हिंस जंतु के साथ रहना फिर भी ठीक है, इतने खतरनाक है, तो ऐसे कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको लेकर के दूसरी बात भी कहते हैं शुरुआत में, बोले देखो केवल इसी को देख करके उनके दोषारोपण नहीं करना चाहिए, हम इतिहास पुराण शास्त्र में और भी देखें ऐसे अनेक महीयसी स्त्री महिला हुए हैं जिनका गुणगान बहुत किया गया है शास्त्र में। ऐसे बोलते हैं कि जो स्त्री पुरुष बोले पुरुष स्त्री दोनों ही कंडम है, कोई अच्छा नहीं है, केवल उनके कहा गया ये कुछ कम थोड़ी, उम्र मर रहा था, उर्वशी ने डांटा उनको, बोले क्यों मर रहे हो, वो भी तो राजा थे, पुरुष प्रवर थे, वो भी तो मर रहा था उनके लिए, बोले कोई किससे कम नहीं है, केवल उनका गुण दुर्गुण गाएंगे, हम ही कुछ गुणवान हो गए ऐसा नहीं है। तो बोलते हैं कि दोनों ही खराब है, अगर सदाचारी होकर के कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते हैं, कृष्ण भक्ति को जीवन में नहीं लाते हैं, कृष्ण भजन नहीं करते हैं, तो जो भी उनके रूप गुण पढ़ाई लिखाई अचीवमेंट सब ऐसे ही है, थर्ड क्लास, कोई किससे मत, सब बेकार है। तो इसलिए कोई गुणवान नहीं है, सब दुर्गुणवान है, केवल गुण है कोई कृष्ण के शरणागत हो गए तो उनके सारे अवगुण चला जाएगा, सारे सदगुण आ जाएगा, नहीं तो कृष्ण भक्ति को छोड़ करके हाईली क्वालिफाइड और बाकी सब ठीक ठाक करो, शास्त्र कहता है हरेर अभक्तस्य कुतो महद्गुणा, उनका महद्गुण हो कैसे सकता है, मनोरथेन सदा धावती वही, बहुत अपने मेंटल सर्कुलेशन में चलते हैं, उनका गुण दिव्य गुण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, केवल हरि के भक्तों में ऐसे सद्गुण आते हैं। तो इसलिए जो भक्ति की स्वीकार नहीं करते हैं उनको तो कदापि विश्वास ना करो। शास्त्र में ऐसे एक वर्णन आता है, पांच स्त्रियों के नाम प्रातस्तुति में लिखा गया है, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच कन्यांग स्मरिंग नित्यंग महापातक नाशनम। बोलते ये पांच स्त्रियों के नाम सुबह उठकर कोई ले ले, ये पांच स्त्रियों का कोई नाम ही ले ले तो महापाप विनाश हो जाएगा, महापातक नाशनम, अब उनको कैसे कहेंगे। और ये पांचों को पांच जो स्त्री का नाम दिया गया शास्त्र में, वो पांच कोई भी एक पति वाले नहीं है, सभी का प्लस वन है। अब अहल्या आपको पता है, उनके पति ने उनको साफ दे दिए पत्थर बन जाओ करके, अहल्या द्रौपदी तो फाइव इन वन, अहल्या द्रौपदी तारा भी बाली सुग्रीव दोनों थे, और कुंती वो तो पता ही है, वो तो शादी से पहले ही टेस्टेड होकर किए थे, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी अब रावण के बाद भीषण के साथ भी रही, लेकिन फिर भी ऐसे पांच स्त्री जिनका हम चरित्र देखते हैं, जिनका हम जानते हैं कि कोई भी सती के लायक नहीं है, तो उनको सती से भी और ऊपर की स्थिति दिया गया। उनको कहा गया ये विवाहित होने पर भी, एक से ज्यादा शादी करने पर भी, शास्त्र उनको कन्या शब्द से कहा, पंच कन्या, पंच सती की पंच स्त्री नहीं कहा गया, बोला ये पांच स्त्री जो है कन्या है अभी भी। पंच कन्यांग स्मरेंग नित्यंग महापातक नाशनम, महापाप नाश हो जाएगा उनके नाम उच्चारण करने से। क्यों, क्या विशिष्टता था उनमें, इतनी बड़ी पुष्ट उनको दे दिया गया पांचों को। कोई विशिष्टता खास यही बात था कि पांचों भले कुछ भी हो कृष्ण के साथ संबंधित थी, पांचों कृष्ण के शरणागत थी, भले अपना प्राइवेट पर्सनल कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन कृष्ण के प्रति सभी संबंधित थी, कृष्ण संबंधित थी, कृष्ण के शरणागत थी। ऐसी एक ही गुण के कारण वो भले कैसे हो उनके नाम उच्चारण मात्र में पाप नाश हो जाएगा। तो अगर कोई भी स्त्री कैसे भी कैसे हो अगर कृष्ण भक्त हो गई, कृष्ण के शरणागत हो गई, तो फिर उनको इसी खाता पर नहीं लेना चाहिए ना, नहीं वो तो हम कलयुग के आरंभ में देखते हैं बिल्वमंगल ठाकुर, बिल्वमंगल ठाकुर के एक संबंध था कि गणिका से, एक प्रस्टिट्यूट से जिनका नाम था चिंतामणि। अब तक बिल्वमंगल ठाकुर के जितने स्तोत्र है उसमें पहले लाइन में उनको वंदना की है एक गणिका चिंतामणि की, बोले गुरु चिंतामणि, हाँ मेरे गुरु है बिल्वमंगल ठाकुर बोलते हैं, इतने बड़े भक्त भगवान के साक्षात्कार किए थे, उनके हरेक रचना में फर्स्ट लाइन में उनको वंदना किए चिंतामणि को, गुरुर मम चिंतामणि बोलते हैं। क्यों, यद्यपि वेश्या थी और उनके प्रति ये इतने आसक्त थे, बिल्वमंगल ठाकुर को आप कैरेक्टर पढ़ेंगे तो उनने विवाहित थे, बड़े उच्चकुलीन थे, सब कुछ था, लेकिन इतने थे कि भाग कर जाते थे चिंतामणि के पास। उनके घर में उनके पिताजी के देहांत हो गया, उनके पत्नी उनके माँ सब बोलते, बोले पिताजी डेढ़ बड़ी पड़े हैं, उनको शुद्धि क्रिया कुछ बात करो कुछ करो, नहीं सुना, पिताजी मर गए ठीक है बस मैं जाऊँ। वो रात को उठकर चला, इतना भारी बारिश हो रहा था, कितने समझाए उनके कुलगुरु, समझाए पत्नी, समझाई माँ, समझाए भाई, समझा नहीं माना, इतने अटैच था वो वैश्या चिंतामणि से। रास्ते में जाने के समय नदी पार करके जाना होता था, तब जो है ब्रिज तो नहीं हुआ तो हुआ करता था, नौका में पारी होता था। रात रात तक तक घर में पिताजी मर गए इसलिए लेट हो गया, रात तक उनको सब रोका कर रख ले, रात को नींद नहीं हुआ, आधी रात को उठ करके चलने के लिए तैयार की, भारी बारिश हो रहा था, घनघोर बारिश, बिजली चढ़क रहा था। उसको देख करके घर वाले सारे निंदा कर रहे थे, बोले तू कैसे कैसे जी रहा है, इतने बड़े कुलीन, इतने ज्ञानी पुरुष होकर भी। तो उनका पत्नी समझा कर थक गया, बोले मैं क्यों, पत्नी जाकर सुसाइड कर डाली, घर में पिताजी का लाश पड़ा है, पत्नी घर से अंधकार रात बारिश में भागकर जाकर नदी में कूद गई, वो मर गई, लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं, वो तो चिंतामणि से आ सकता, जा रहे थे बिल्वमंगल ठाकुर। घर वाले सब छोड़ करके आधी रात को घोर घनघोर बारिश में फिर भी चले गए, और आधी रात को तो बोट में आन था नहीं, बोट तो था नहीं, अब नदी पार कैसे करूं, इधर उधर पागल की तरह भागे, इधर उधर देखे कोई उपाय नहीं था, बारिश हो रहा था, पानी बिल्कुल भर के बह रहा था नदी में, कैसे पार करें, पागल हो चुके थे। तो देखे कि कुछ एक बह रहा है, बोले सुझे लकड़ी का खंड है, उसी के सहारे पार कर जाऊंगा, कोई बात नहीं। वो लकड़ी था नहीं, आपने पत्नी की डेढ़ बड़ी थी, उसी को लकड़ी समझ करके कूद पड़े, उसी के सहारे में पार कर गए, नदी पार गए उसी के सहारे, बोले समझे लकड़ी, उनको ध्यान ही नहीं था, इतने कामांध हो चुके थे। और फिर गीले कपड़ों में भागे, बारिश भी हो रहा था, नदी में इसी तैर करके आए, जाकर चिंतामणि के घर में प्रवेश करने के लिए देखे, वो अपस्टेयर में रहती थी, और सीढ़ी जो जहाँ पर स्टेयर कैसे बंद था, चाबी लगा था, आधी रात था उनके यहाँ पर, घूम घाम के चारों तरफ दो चार परिक्रमा लगाए को मिले नहीं रास्ता, कैसे ऊपर चढ़ेंगे, बारिश में एक सांप उतर करके चढ़ रहा था ऊपर में, ऊपर तक गया था, और सांप को बोले अरे रस्सी तो व्यवस्था है ही है, पकड़ लिए सांप, सांप को पकड़ लिए, सांप मरने के भय से इतने टाइट हो जाते हैं, सांप को जानते हैं उनका स्वभाव होता है, कोई पकड़ लेना इतने हार्ड हो जाएंगे, बिल्कुल पकड़ लिया उन्होंने ऊपर से, तो जीवंत सांप को पकड़ करके चढ़ गए अपस्टेयर को, चले गए अपस्टेयर, चले गए, इसे घनघोर बारिश बिजली चढ़ रहा, जाकर के उनके नाक की उनके दरवाजा, वो तो घबरा गए, बोले कौन भूत प्रेत आ गया क्या, इस आधी रात में बारिश में कौन आए। अरे देखे तो ऐसे ही गिले होकर के बिल्लोंगल ठाकुर खड़े,
बोला तुम आए कैसे, मैं तो सीढ़ी जो स्टेयर के स्क्वाड बंद है ना। नहीं तूने व्यवस्था तो क्या, रस्सी था मगर गया, रस्सी मैं तो कोई रस्सी नहीं लगा, जा करके टच जो भी होगा देखे तो सांप ही। बोले बाप रे बाप सांप, तो बोट नहीं होगा नदी कैसे पार की। नहीं नदी तो बोट में नहीं था, कोई लकड़ी आ रहा था पार कर दिया मुझे। लकड़ी ऐसे आधी रात लकड़ी कैसा, जाके देखे उनके स्त्री की डेड बॉडी था। ऐसे खतरनाक स्थिति में आ करके पहुंचे तो उनको देख करके चिंतामणि बेस्या ने उनको फटकारी, बोले तू इतने पागल, इतने सब कुछ करके पागल, अगर इतने ध्यान इतने प्रयास इतने चेष्टा तू कृष्ण के लिए करता, आज तू भगवत भक्त हो जाता, भगवत को प्राप्ति भगवान को प्राप्त कर लेता, जीवन के जो असली लक्ष्य उसको प्राप्त कर लेता। तू मुझे पीछे पड़ा क्या मिलता तुझे, इसमें है क्या, मैं तो मरने वाली हूं, तू ही मरने वाले है, दोनों ही नरक में जाएंगे। उन्होंने जो इस प्रकार बात कही, सही बात कही, तो उनको लगा क्योंकि वो है तो ब्राह्मण कुल वेद ज्ञान था, उनको सब जानकार थे, जैसे उनसे इतने कामांध थे, इतने उन्हीं के सामने जिसके प्रति आसक्त तो बिल्कुल इतनी बुरी तरह से फटकारी, उनको इतने गाली दी, ऐसे बोला कि तुम जितने मेरे लिए आसक्त हो इतने उसका आधा चौथाई अगर आसक्त कृष्ण के प्रति होता तो आपका जीवन धन्य हो जाता, सफल हो जाता। वो बात उनको बुरी तरह से स्ट्राइक की, तो उनसे वही रात्रि से आधी रात्रि से वहीं से उन्होंने निकल पड़े। बोले ना बस, और घर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, उन्होंने सही बात कही, मैं कृष्ण के लिए क्यों नहीं प्रयास करते। कृष्ण अर्थे चल पड़े अपने घर बाड़ी राज्य त्याग करके, वही रात चलते 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 कहते आए, हमेशा कृष्ण ध्यान करते थे, हे कृष्ण क्या कभी मैं आपको पा सकता हूं, क्या कभी मैं कभी आपका, वही चिंतन करते करते वो कोई भिक्षा मांगते थे, कोई भूख लगा तो, नहीं तो चलते चलते आते थे, आ करके वो थे केरला के, वहां के इंडिया बॉर्डर, वहां से चलते 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 थे से भिखारी वेश में, ऐसे ही पागल की तरह भागे भागे महाराष्ट्र तक आ गए। महाराष्ट्र में बोलते हैं कि ये कृष्णा नदी का जहां उद्गम है वहां स्थान का नाम सतारा है, आप जानते होंगे, पुणे के पास एक डिस्ट्रिक्ट है सतारा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर कृष्ण बन्ना ये दो धारा है, कृष्णा के एक साइड और धारा निकला है बन्ना नदी, कृष्ण बन्ना नदी, वहीं पर आकर पहुंचे। और तभी जमाने में बड़े सुंदर नदी के धारा दो भाग से जाकर वहां स्नान किए, स्नान करके भूख तो प्यास भी लग रहा था, सब कुछ कर रहा था, इतने दिन से चलते चलते आए हैं हताश, कृष्ण के स्मरण करते हुए स्नान करते हुए देखे कि तूट पर एक कुमारी स्त्री स्नान कर रही थी। अब कुमारी हो जैसे युवती स्त्री स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी, तो उसको देखे उल्ट फिर सारे कृष्ण स्मरण गाए और स्त्री स्मरण फिर हो गया, और ये इतने हो गए कि सारे बुद्धि वृत्ति सब साइड हो गए। और तो फिर उनके पीछा किए, वो स्नान करके गई तो उनका पीछे पीछे गए, बोले और क्या करूं मेरी बुद्धि काम नहीं करता है, कब उसको प्राप्त करना है, उनका पीछे पीछे उनको फॉलो किए। वो स्त्री भी देखा मुझे क्यों पीछे पड़े, उन्होंने मैं स्नान करके आ रही थी, उनका पीछे पीछे वो आए, वो अपने घर में गई, वो उनका घर में गए, जाकर दरवाजा पर बैठे, वो घर चली गई, उनको शर्म लग रही थी, जा करके उनके पति को बोले, वो भी नूतन शादी की हुई होगी, उनके पति को बोले कि लगते तो अच्छे खासे व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गए, मैं स्नान कर रही थी, मुझे देखे देख कर मेरे पीछे फॉलो कर रहे, यू टेक केयर ऑफ हिम। तो उनके पत्नी बड़े सुयोग्य ब्राह्मण थे, वो आए देखे कि जेनुई धारण किए हैं और तिलक लिए हैं, बिल्कुल पंडित कृष्ण भक्त हो चुके थे ना अभी, लेकिन ऐसे कर रहे हैं, लेकिन बैठे हैं, उनको पूछे क्या सेवा करूं आपके, आगे प्रणाम किए, बोले आप लगता है कि आप तो भक्त जी से लगते हैं, क्या करूं आप, क्या सेवा करूं। वो बोला क्या करूं आपको, उन्होंने बोले अब मुझे, उन्होंने स्त्री के पति में हूं, वो मुझे बताई कि आपको पीछे पीछे आ रहे थे, मैं आपको क्या सेवा करूं बताऊं। वो इतने बेशरम हो गए थे, उनको ही बता दिए, हाँ बोले देखो मैं इसे से जा रहा कि चलो आपके स्त्री की देख करके मैं बिल्कुल पूरी तरह से अभी बुद्धि भ्रमित हूँ और मैं चाहता हूँ को उनको भोग करने के। अरे उनके पति को बोले, और वो भी इतने सद्गुण ब्राह्मण थे, भक्त थे उनके पति, वो बोले ठीक है कोई बात नहीं। वो जाकर अपने पत्नी के बोले, बोले आप उनके मनोकामना पूर्ण करो। वो बोले आप बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ, आप जाइए। तो पति के आदेश से आदेशी हो करके वो ब्राह्मण पत्नी ने आप सदा के फिराई, वो जो बैठे थे उनके उनके पास है। जब आए उनके पास उनको तो विश्वास नहीं हो रहा था, बोला मुझे मारते पीटते नहीं है, मुझे वो गेस्ट करके बोलो अच्छा मेरे मनोकामना पूर्ण करने की व्यवस्था कर। जैसे आए तो उनको फिर याद आया, उनको देख करके सामने उनको देखे तो उनको याद आया, बोले मैं चिंतामणि की याद आया, बोले उनके पास में कितने आसक्त हो जाती थी, उनसे फटकार करके ये बुद्धि लेकर कृष्ण प्राप्ति करने के लिए जा रहा था फिर फंस गया, ये दोबारा पतन मेरे हुआ, क्या कारण है? ये आंख ही कारण है, ये आंख इस रूप को देख करके इतनी तरह से बुरी से फंस गया। तो ना 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 ना, फिर दोबारा मुझे फंसना नहीं है, मुझे कृष्ण के भक्ति के रास्ते में चलना है। तो सामने उनका श्रीखंड थी, बोले अब क्या इच्छा, क्या करूं सेवा बताइए क्या करूं, पति ने मुझे आदेश किया आपको संतुष्ट करने के लिए, क्या सेवा करूं? तो वो तो उनका कान में कुछ नहीं जा रहा था, वो तो वही चिंतन कर रहे थे चिंतामणि की जो डांट और उनके किस प्रकार पतन दोबारा हुआ है। इसलिए विदग्ध होकर के बोले ठीक है मेरा सेवा करना चाहती हो ना, हाँ जो बोलो मैं सो करने के तैयार ना थे, पर आपके जो गवाह जो बाल बांध रहे उसमें वो पिन लगाते हैं हेयर पिन, बोले वो तो हेयर पिन निकाल के दो, हेयर पिन करना बस, बोला ना मेरे जो इच्छा तो सब वही हेयर पिन तो निकाल के दो, वो समझ नहीं पाई, वो हेयर पिन निकाल करके दी, उन्हीं के सामने दोनों हेयर पिन लिए, आपने आंख को कोसते हुए दोनों आंख में तुरंत फोड़ दिए, दोनों आंख को विद्ध कर दिए, झरझर रक्त बह गया, दोनों आंख नष्ट कर दिए। वो तो स्त्री देखे हटपुल, वो क्या क्या, ये तो ब्राह्मण मुझे बुलाया, आपने आंख फोड़ दिया मेरे कांटा लेकर के, चिल्लाई उन्होंने, उनके पति दौड़कर देखे तो बिल्कुल रक्ताक्त तो होकर पड़े हैं, उठाए बोल सकते थे, बोले आपका कोई दोष नहीं है, बस मैं मेरा पश्चाताप के फल में मैं भोगाऊं, आपका कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं आप रहिए। तो धीरे धीरे निकल गए, कैसे जाएंगे, बोले नहीं बस मेरा दुर्भाग्य को मुझे भोगने दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, कोई मेरा साथ नहीं आए, हाथ जोड़ के मना कर दिए, ऐसे दोनों आंख में अंधे अकेले चले। कोई प्रैक्टिस नहीं था, पहले का ब्लाइंड होते तो अपने चला लेते गाड़ी, लेकिन वो अभी अभी अंधे बने, नो एक्सपीरियंस, फिर भी ऐसे कई ठोकर खाए होंगे, कई गिरे होंगे, पड़े होंगे, शायद कोई मदद किया होगा, जाकर कृष्णा नदी में फिर दोबारा स्नान किए, पार करके वो ज्यादा जा नहीं पाए, वहीं बैठे वो किनारे पेड़ के नीचे बैठ करके इतने आतुर भाव से उनका बढ़ गया, अब तो कुछ देख नहीं सकते, क्या कुछ हो रहा है दुनिया, कुछ नहीं, तो केवल कृष्ण दर्शन हुआ, इतने गंभीर चिंतन किए, इस प्रकार के कृष्ण को ध्यान किए, यही बैठ कर एक कविता लिखे श्री कृष्ण करणामृतम, कृष्ण के कान को अमृत सदृश जो पद्यावली यही बैठ के रचना किए आपने पश्चाताप के ज्वाला में, और वहीं से फिर चलते चलते, क्योंकि अब जो कृष्ण सहायता मिल गया, वो अकेले चलते चलते महाराष्ट्र से वृंदावन आ गए, वृंदावन आकर के वो आंधे थे फिर भी कृष्ण के साथ इतने उनका संपर्क हुआ, कृष्ण उनके साथ खेलते थे, पकड़ते थे, खिलाते थे, करते थे उनके साथ ऐसे करते थे, वही चौराग्रगण्यम अष्टकम लिखे हैं जो आप बोलते हैं, बोले तू मेरा सब कुछ चोरी लिया, मुझे तो इतने घायल किया, मेरा सारे बुद्धि ज्ञान संपत्ति घर परिवार तो पहले ही ऐसे निकाल दिया, वैश्या के प्रति आप तो वो भी ले लिया, ये सब कुछ ले लिया, धनंच मानंच तथेन्द्रियाणाम हृत्वांग प्राणस्य हृत्वा मम सर्वमेव, बोला सब कुछ हरण कर लिया मुने, लेकिन आज तू मेरे आया है, मेरे अंधे को हेल्प करने के लिए आया है, मैं तुझे पकड़ा हूं छोड़ूंगा नहीं, उसे बांधूंगा। ये भाव उनके कृष्ण प्रति, बोलते हैं कि सैकड़ों साल वृंदावन में रहे, बिल्कुल कृष्ण के साथ रहते थे, बाल कृष्ण के सखा बन गए थे उन्होंने, लेकिन आंख नहीं दिखता था, लेकिन सब कुछ दिव्य दृष्टि से देखते थे, ऐसे कर ये भावना आ गया। तो एक स्त्री गुरु मानते हैं, इसलिए बोली उन्हीं के कारण में आज इतने बड़े विल्ल मंगल ठाकुर बने, एक अति उच्च कोटि के भक्त माने गए, उनके रचना भगवान के कान को अमृत जैसा लगता है, ऐसे बन गए, जो इतने खतरनाक आसक्त वैश्यासक्त पुरुष थे। तो कोई अवगुण, कोई तुच्छ गुण, कोई कमी, किसी प्रकार के कोई फर्क नहीं डालेगा, अगर आप तीव्र भाव से कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर ले, सारे रेड लाइन ब्लैक लाइन सब वो तोड़ मरड़ करके सीधा हो जाएंगे, सब राइट लाइन में आ जाएंगे। मिलन मंगल ठाकुर का इसी एक ही जन्म में हो गया। और ऐसे अनेक उदाहरण है, अनेक उदाहरण है जो राम कृष्ण के चरण में समर्पित करके और इतिहास में पुराण में शास्त्र में आपने नाम कुछ अजुल्य करके रखे। ये जैसे पांच स्त्रियों का नाम लिए सबरी, और कैसे अनेक अनेक हैं जो केवल बाकी किसी के प्रति आसक्त नहीं, कृष्ण के प्रति जैसे प्रकार से आसक्त हो गए, फिर उनका सारे अवगुण दुर्गुण सारे साइड हो गया और बहुत ऊपर उठ चले जाएंगे। तो इसलिए ना तो हम स्त्रियों की चर्चा करना चाहिए ना पुरुषों की चर्चा करना चाहिए, केवल हमारे एक ही चर्चा के विषय होना चाहिए, श्री राधिका रमण जी की, है ना। उनके चर्चा, उनके मनन, उनके चिंतन, उनके दर्शन करें, बाकी जितने दुर्गुण अवगुण अन्य वस्तु है सारे खत्म होकर कन्वर्टेड हो जाएगा, तो आप महापुरुष बन जाएंगे। तो इसलिए यद्यपि ये सब चर्चा करते हैं, अब पढ़ेंगे आगे चल के उर्वशी ऐसे कहेंगे स्त्रियों के बारे में, उसे कहें वो एक साल में एक बार मिलेंगे, उर्वशी लोक तक प्राप्ति कर गए, लेकिन प्राप्ति करने के बाद भी उनका मन शांत नहीं होता है। तो इसलिए अगर काम को पूर्ति करने के लिए प्रयास करो तो पूर्वा जैसा सामर्थ्य तो हमारा है ही नहीं, ना इतने गुण है, ना रूप है, ना धन है, पोषण ना पोजिशन है। वो ऐसा करके गंधर्व लोक प्राप्ति कर गए यज्ञ करके, तभी ना संतुष्ट हो पाए, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हैं। तो कहा कि उसके पीछे पड़ो, अगर आपके मन को इंद्रियों को सब प्रकार से शांत करना चाहते हो, भरपूर उनको सुख देना चाहते हो, तो केवल श्री कृष्ण श्री राम के चरण में समर्पित हो जाओ, दैट्स इट। फिर तो सारे सर्टिफिकेट चेंज हो जाएगा, सब चेंज होकर बिल्कुल ब्रांडेड हो जाएंगे आप। हरे कृष्ण। यस, क्या? हाँ हाँ वही 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 वही। हाँ कहाँ पे? कुर्म क्षेत्र में, पता नहीं, वृंदावन में है स्मृति उनका। अब कृष्ण वर्णा के पास है, यहाँ ये दो जगह तो मैं दिखाऊँ, है ना। एक तो महाराष्ट्र में सतारा में है उनके स्थान जहाँ रचना के थे, बाकी वृंदावन में है, है ना। हाँ उसके बाद वृंदावन आए, रचना करने के बाद फिर आए। ओके हाँ जी हाँ। तारा बाली की पत्नी थी, बाली सुग्रीव है ना, ओ है वो बाली, बाली के हत होने के बाद फिर सुग्रीव के साथ है ना, वो तारा की बात नहीं कह, इनके कह। ओके हाँ जी क्या दिव्य और मानसिक? हाँ तो मानसिक था तो अपने मन में कुछ सोचता है, वही मन मन में जो सपना देखता है ना, वही है मानसिक दृष्टि। मन में कुछ सोचो, कोई खर्चा करना नहीं पड़ता, जैसे फर्म जो आपको विचार है कर डालो। और दिव्य तो दिव्य होता है, ये अपने मन के नहीं होता है, वो स्पिरिचुअलाइज्ड है ना। आइडेंटिफाई मानसिक आपके प्रसिद्ध है, इज योर प्रोडक्शन, दिव्य इज नॉट योर प्रोडक्ट, ये फ्रॉम प्रोडक्ट फ्रॉम इंपोर्टेड फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके ये कोरा कोरा सीधा सीधा फर्क है उसमें क्या फर्क है? अरे एग्जाम्पल दे, दिन दोपहर में सपना देखता होगा डेली, और क्या है यही सारे आपकी मानसिक मनुष्य धरातल ना, किसको देख लिया बस मन में सोचा हम यही होता, उनके घर में होता, ऐसे होते, ये सब मानसिक है। लेकिन साक्षात कोई दिव्य लोक से कोई आए जिनको देखने से किसी का भी दृष्टि पड़े, उनका मन बुद्धि चेतना सब परिवर्तन हो जाए, वो दिव्य है। लेकिन दिव्य का अब एक्सपीरियंस हमारा किसी का नहीं है, तो इसलिए एग्जाम्पल उसका हो ही नहीं सकता। अब मन का सभी का एक्सपीरियंस है, अब जितना मर्जी देख लो, है ना। हाँ जी, ये मैंने ही बताया, वो शास्त्र ने बताया। क्योंकि वो रामायण ज्यादा पढ़ते नहीं ना, इसलिए उनके बारे में पता नहीं है। पढ़ो, वो भी पता चल जाएगा, वो भी कुछ कम नहीं थे। भगवान राम के प्रति उनका जिस प्रकार के भाव था, बड़े महान। मंदोदरी तो रावण को खूब समझाया, डेली समझा रही थी, मरने के बाद भी डांट रही थी, बोले मैं कितनी बार बताई तुझे। बाद में और तारा बाली के बाद राम के साथ उनका साक्षात्कार हुआ था, उनका भी जो वाणी भगवान के प्रति, अपने बेटा अंगद को उन्हें समर्पण करवाया था, और अहल्या तो सब जानते ही हैं, भगवान राम के चरण स्पर्श की, उनके चरण प्राप्त करके उन्होंने फिर दोबारा बने, है ना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और बाकी रह गया।